arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है, लेखिका श्रीमती शकुंतला ब्रजमोहन, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुत कहानी का नाम
प्रायश्चित। पड़ोस से शहनाई की मधुर आवाज प्रिंसिपल सुनंदा को सुनाई पड़ रही थी। वो जल्दी जल्दी विवाह में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो रही थी। प्रिंसिपल सुनंदा अपनी विद्वत्ता तथा दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। न जाने कितनी लड़कियों और स्त्रियों की मदद और आर्थिक सहायता वो कर चुकी थी। असमय पक गए चांदी जैसे केश उनकी गरिमा को बढ़ाते ही थे। एक प्रकार की तेजस्विता उनके मुंह पर व्याप्त थी। यद्यपि वो डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल थी और कई स्कूल उनके संरक्षण में थे, पर उन्हें अपने पद का अभिमान नहीं था, न ही प्रसिद्धि का एहसास। कोई भी स्त्री अपना दुखड़ा किसी भी समय उन्हें सुनाने आ सकती थी। चपरासी को खास हिदायत थी कि उनके द्वार से कोई लौटने ना पाए, खासकर लड़कियां तथा स्त्रियां। एक चीज उनके पास थी और वो था उनका अनुशासन, जिसे वो बहुत महत्व देती थी। गाना बजाना चल रहा था। सुनंदा के पहुंचते ही स्त्रियां आदर से खड़ी हो गईं। उनके बैठने पर सभी उन्हें घेर कर बैठ गईं। हर स्त्री चाहती थी कि वो उनसे बात करे। वो भी हंस हंस कर सभी की बातों का उत्तर दे रही थी। काफी देर से वो देख रही थी कि एक गरीब सी दिखने वाली वृद्धा बड़ी हसरत से उन्हें निहार रही है। उसकी आंखों को देखकर प्रतीत होता था कि वो उनसे कुछ कहना चाहती है, पर चारों तरफ स्त्रियों से घिरी देख उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। सुनंदा को जिज्ञासा हुई कि वो वृद्धा उससे क्या कहना चाहती है। धीरे धीरे खिसकती खिसकती वो उसके पास पहुंच गई। उन्हें पास देखकर वृद्धा की आंखें खुशी से चमक उठी। सुनंदा ने पास जाकर धीरे से पूछा, माता जी, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं ना? वृद्धा ने सहमति से सिर हिलाया। सुनंदा ने कहा, तो अपने दिल की बात कह डालिए। वृद्धा ने भयभीत दृष्टि से इधर उधर देखते हुए कहा, मैं जो कहना चाहती हूँ वो सबके सामने कहने योग्य नहीं है। सुनंदा ने कहा, तो हम बाहर चलते हैं, वहीं विस्तार से आप जो कहना चाहती हैं कह दीजिएगा। वो वृद्धा को लेकर एकांत स्थान पर आईं और बैठकर बोली, अब बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। थोड़ी देर के लिए वृद्धा जड़वत हो गई। ऐसा लगा जैसे वो जो कुछ कहना चाहती है उसको कहने के लिए जबान उसका साथ नहीं दे रही है। सुनंदा ने बहुत प्यार से उसके हाथ को अपने हाथ से धीरे से दबाते हुए कहा, माता जी, अपनी बेटी से भी कोई दुराव रखता है? बेटी शब्द सुनकर ही वृद्धा की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर कहा, बेटी, तुमने मुझे माँ कहा है, अब मैं निर्भय होकर तुमसे सब कुछ कह दूंगी जो मैं वर्षों से अपने हृदय में छिपाई बैठी थी। ऐसी बातें मैं किसी से कह भी तो नहीं सकती थी। इस वृद्धावस्था में इस व्यथा को ज्यादा दिन हृदय में पाल रखने में भी अपने को असमर्थ पा रही थी। जो ज्वालामुखी मेरे हृदय में धधक रहा है उसे आज अपनी बेटी से कहकर अपने दुख के भार को हल्का कर लूंगी। वृद्धा ने कहना शुरू किया, बेटी, मैं बहुत गरीब विधवा हूँ। मेरी एक लड़की है जिसका विवाह हो चुका है। मेरी नातिन आपके स्कूल में पढ़ती है। पढ़ने में बहुत तेज है, हमेशा अव्वल आती है। अब आगे पढ़ाने को मेरे पास कुछ नहीं बचा है। सुनंदा ने आश्चर्य से पूछा, उसके माता पिता हैं, फिर ये भार आप पर क्यों है? वृद्धा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी नातिन अपने माता पिता के यहाँ से भागकर मेरे घर आ गई है। सुनंदा ने विस्मय से पूछा, उसे भागकर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? वृद्धा ने रोते हुए कहा, अब मैं अपनी जबान से क्या कहूँ, ऐसी शर्मनाक बात कहने को मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे पाएगी। बेहतर होगा मेरी नातिन से आप पूरा हाल सुन लें तो बड़ी कृपा होगी। सुनंदा ने कहा, कल सुबह आपकी नातिन को मेरे बंगले पर जरूर भेज दीजिएगा। उसकी आगे की पढ़ाई के लिए आप जरा भी चिंता ना करें, मैं आपकी बेटी हूँ, क्या इतनी मदद भी नहीं करूँगी? वृद्धा ने कृतज्ञता से सुनंदा का हाथ थाम कर आंखों से लगा लिया। उन गीली आंखों से सुनंदा की हथेलियाँ गीली हो गईं और साथ ही हृदय भी। दूसरे दिन जब प्रिंसिपल सुनंदा बगीचे में बैठी समाचार पत्र पढ़ रही थी तो उन्होंने दूर से एक सहमी हुई लड़की को आते देखा। पास आने पर वो उस लड़की को एक टक निहारती रह गई। ऐसा प्रतीत होता था जैसे शिल्पी द्वारा गढ़ी मूर्ति ही सजीव होकर उनके सामने आ खड़ी हुई हो। अनोखी सुंदरता तथा निर्मलता उस लड़की के मुंह पर व्याप्त थी। अपलक नेत्रों से वो उसे निहारती रहीं। लड़की की मधुर आवाज सुनकर उन्हें लगा जैसे घंटियां बज रही हों। वो चैतन्य हो गई। लड़की ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने उसे पास बैठने का इशारा किया। लड़की के बैठ जाने पर सुनिंदा ने उसका नाम पूछा। लड़की ने शर्माते हुए कहा, मेरा नाम दुर्गावती है, मुझे नानी ने भेजा है। सुनिंदा ने हंसकर कहा, तुम्हारी माँ ने यह नाम बहुत सोच समझकर रखा है, मैं भी होती तो तुम्हारा यही नाम रखती। माँ का नाम सुनते ही लड़की के चेहरे पर घृणा का भाव उभर आया। अपने को संयत करते हुए बोली, उनका नाम मत लीजिए, उनका नाम सुनते ही मेरा रोम रोम जलने लगता है, माँ के नाम को कलंकित किया है उन्होंने। लड़की भावावेश में बोले जा रही थी, माँ भी अपनी बेटी को बेच सकती है, कभी आपने स्वप्न में भी सोचा है या जागृत अवस्था में सुना है? मेरे संग ये सभी कुछ घटित हो चुका है। ये कहकर लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने घुटनों में अपना सिर छिपा लिया। थोड़ी देर सुनिंदा उसकी सिसकियों की आवाज सुनती रही, फिर प्यार से उसे उठाते हुए बोली, दुर्गा तुम तो बहादुर लड़की हो, फिर इतनी जल्दी विचलित क्यों हो गई? अपने नाम को सार्थक करो, विपत्तियों से डट कर मोर्चा लो। लड़की ने घुटनों से अपना मुंह उठाया, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक उठा। सुनिंदा ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी अपनी इस माँ से सब कुछ कहकर अपने हृदय में पलते दुख को हल्का कर लो, तुम्हारा भेद मुझ तक ही सीमित रहेगा, मुझसे जो सहायता हो सकेगी जरूर करूंगी, पर पहले विस्तार से मुझे सभी बातें सुना दो, तभी मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। थोड़ी देर दुर्गा चुप रही, जैसे अपनी लज्जाजनक कहानी सुनाने की हिम्मत न जुटा पा रही हो। फिर उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय की छाया तैर गई। वो बोली, मैं माता पिता की दुलारी बेटी थी, मेरी माँ भी बहुत रूपवती थी, मेरे पिता अच्छे खाते पीते घरों में से थे, पैसों का अभाव मुझे कभी नहीं रहा, जो मांगा मिल गया। जब मैं कुछ बड़ी हुई और समझ आई तो मैंने सोचा पिताजी तो कोई काम करते नहीं, फिर इतना पैसा कहाँ से आता है। मैंने माँ से जब ये रहस्य जानने की कोशिश की तो उन्होंने बात उड़ाते हुए कहा, बेटी तुम्हें जो चाहिए बता दो, हम मंगवा देंगे, तुम मन लगाकर पढ़ो लिखो, इन बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। मैं भूल गई और पढ़ने लिखने में जुट गई। बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं चाहती थी पिताजी का नाम रोशन करूं ताकि उन्हें कभी ये एहसास ना हो कि उनके बेटा नहीं है। अब मैं जिंदगी के 17 वर्ष पूरे करने वाली थी। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटी इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम बहुत से लोगों को बुलाना चाहते हैं, तुम्हारे लिए हमने विशेष पोशाक का ऑर्डर दे दिया है, देखोगी तो खुश हो जाओगी। मैंने प्यार से पिताजी की तरफ देखते हुए माँ के गले में हाथ डालते हुए कहा, माँ बेकार इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रही हो, इतने आदमियों को बुलाने की क्या जरूरत है, हम तीनों क्या कम हैं? माँ ने लाड़ से मुझे पुचकारते हुए कहा, हमारी बेटी के लिए पैसे की कमी हमें कभी नहीं रहेगी। जन्मदिन की सुबह पिताजी ने एक पैकेट मुझे पकड़ाते हुए कहा, बेटी ये पोशाक आज शाम को तुम पहनोगे, इसी में कुछ जेवर भी हैं, संभाल कर रख लेना। माँ तथा पिताजी की दरियादिली देखकर मैं बाग बाग हो गई। शाम को मैंने पैकेट खोला और उसमें रखी पोशाक देखकर मैं धक से रह गई। ऐसी पोशाक तो पेशेवर औरतों को मैंने पहने देखा था, जेवर भी उसी प्रकार के थे। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी कीमती पोशाक और कीमती जेवर लाने का पिताजी का अभिप्राय क्या है, पर उसी रात को सब समझ में आ गया। शाम को मैंने माँ से कहा भी कि ऐसी पोशाक हमारे लिए आपने क्यों मंगवाई, जैसे कपड़े हम पहनते हैं उसी प्रकार के क्यों नहीं मंगवाए। माँ ने कहा, बेटी हम तुम्हें नए किस्म की पोशाक में देखना चाहते हैं। गाढ़े नीले रंग का चूड़ीदार पैजामा था, उसके ऊपर हल्के नीले रंग की घेरेदार कमीज थी, चुस्त बास्केट के ऊपर बहुत हल्के रंग की पारदर्शक ओढ़नी थी जिस पर सितारे चमक रहे थे, कान में मुगल कालीन बड़े बड़े जड़ाऊ इयररिंग थे, गले में लंबा चमचमाता हार था। दर्पण में अपने रूप को देखकर मैं स्वयं मुग्ध हो गई। सभी मेहमान आ चुके थे। मेज पर एक बहुत ही प्यारा बड़ा सा केक रखा था। उसके चारों तरफ 17 मोमबत्तियां लगी थीं। माँ मुझे लेकर हॉल में गईं। उनके कहने पर मैंने सबको नमस्कार किया। थोड़ी देर के लिए सभी स्तब्ध होकर मुझे निहारते रहे। फिर तालियों का जो सिलसिला चला वो बहुत देर तक चलता रहा। मैं संकोच से गड़ी जा रही थी। इतने आदमियों के सामने आने का मेरा पहला अवसर था, और वो भी ऐसी पोशाक में। माँ ने मुझसे केक कटवाया। हैप्पी बर्थडे के संग एक बार फिर तालियों से हॉल गूंज उठा। मैंने केक काटकर पहले माँ फिर पिताजी को खिलाया। माँ ने मुझे बड़े प्यार से देखते हुए केक का एक टुकड़ा मुझे खिला दिया। मैंने आश्चर्य से देखा। शराब का दौर शुरू हो गया था। वहाँ आए लोग शरीफ कम बदमाश ज्यादा दिख रहे थे। हर एक मुझे ऐसे तोल रहा था जैसे मैं कोई बिकाऊ वस्तु हूँ। खुसुर पुसुर मची थी। माँ तथा पिताजी हर एक के पास जाकर कुछ बातें करते, फिर इनकार में सिर हिला देते। आखिर एक बहुत भद्दे मोटे सेठ जैसे व्यक्ति से बातें करके उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। मैं धीरे धीरे खा रही थी। कनखियों से सब कुछ देखकर समझने का प्रयत्न कर रही थी। धीरे धीरे करके सब चले गए। वही मोटा सेठ रुका रहा। माँ ने मुझसे कहा, बेटी अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर सो जाना। तुम्हारे कमरे में सभी उपहार रखवा दिए हैं। मैं उनके सामने ऊपर कमरे में चली गई, फिर दूसरे रास्ते से एक छोटे से कमरे में घुस गई जहाँ से मैं उन लोगों का वार्तालाप सुन सकूं, क्योंकि मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गया था। माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी, इस हीरे की इतनी कम कीमत नहीं सेठ जी, ये नहीं चलेगा। मेरी बेटी तो लाखों में एक है, बहुत ग्राहक मिल जाएंगे। वैसे मेरा चकला भी है। सेठ बोला, इसे अपने चकले में बिठाकर रकम वसूलने का इरादा है। यह सच है कि इसे बिठाते ही आपका चकला चल उठेगा, पर इस हीरे का वो स्थान नहीं है। इसे तो हम अपनी रखेल बनाकर रखेंगे। तुम्हें एक मुश्त इतना रुपया देंगे कि तुम्हें फिर पैसे की चिंता नहीं रहेगी। मेरे पिता हंसते हुए बोले, अरे सेठ जी, जब आप इसका उचित मूल्य देंगे तो हम ऐसा क्यों करेंगे। सेठ ने एक बहुत बड़ी नोटों की गड्डी मेरी माँ को पकड़ा कर कहा, किसी समय तुम भी कम नहीं थी। सुनकर माँ बेहयाई से हंस पड़ी। सेठ बोला, तो कल रात का पक्का रहा। माँ तथा पिताजी ने प्रसन्न होकर कहा, पर बाकी पैसा कल सुबह मिल जाना चाहिए। सेठ भद्दी हंसी हंसता हुआ बोला, क्या हम पर विश्वास नहीं है। माँ बोली, पैसे के मामले में तो मैं अपने पति का भी विश्वास न करूं, तुम तो पराए हो। सेठ बोला, अच्छा बाबा, कल सुबह बाकी रकम भिजवा दूंगा, पर रात तुम्हारी बेटी मेरी बाग वाली कोठी में पहुंच जानी चाहिए। माँ ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहाने से उसे आपकी कोठी में ले आऊंगी। ये बातें सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं भाग कर अपने कमरे में आ गई और चादर से मुंह ढक लिया। मैंने देखा माँ मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, पर मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैं घोर निद्रा में हूँ। माँ के लौटते ही मैं उठ खड़ी हुई। मेरे पास जो भी रुपए थे उन्हें लेकर मैंने एक मैली चादर से दो पट्टियाँ फाड़ी। फिर चादर ओढ़कर मैंने पट्टियाँ अपने हाथ में बांध ली ताकि ये लगे कि मुझे कोढ़ जैसी कोई बीमारी है। ये मैंने इसलिए किया था कि कोई भी मेरी तरफ भूल कर भी न देखे। धीरे धीरे मैं माँ के कमरे के पास आई। माँ तथा पिताजी घोर निद्रा में थे। शायद इतना अच्छा सौदा करने के बाद उन्हें उस दिन चैन की नींद आई थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। स्टेशन हमारे घर के बहुत करीब था। टिकट लेकर मैं रेल में बैठ गई। नानी का घर मुझे मालूम था। गाड़ी दूसरे रोज़ सुबह वहाँ पहुँचती थी। रास्ते में किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि घृणा से मुँह बिचका कर कहा, दूर बैठ। मैं निश्चिंत होकर दूर बैठ गई। आँखों को छोड़कर मेरा पूरा शरीर चादर से ढका था। सुबह मैं नानी के पास पहुंच गई। नानी मुझे इस अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित रह गई। जब मैंने पूरी बात सुनाई तो वो क्रोध से कांपते हुए बोली, मेरी बेटी और इतनी नीच। सोच कर ही मैं शर्म से गड़ रही हूँ। न जाने कितनी लड़कियों का सर्वनाश करके भी उसका मन नहीं भरा जो अपनी बेटी तक को बेचने को तैयार हो गई। मैंने कहा, नानी अब सोचो हमें क्या करना है। सबसे पहले माँ पिताजी यहाँ ही आएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। तुम्हें उन्हें यही विश्वास दिलाना होगा कि मैं यहाँ नहीं आई हूँ। नानी बोली, दुर्गा तू चिंता मत कर, मैं ऐसा नाटक करूँगी कि वो विश्वास करके उल्टे पांव लौट जाएंगे। वे जैसे ही आए बस तू पीछे की कोठरी में छिप जाना, मैं सब संभाल लूँगी। दूसरे दिन रात को माँ तथा पिताजी बदहवास नानी के घर पहुँच गए। पहुँचते ही उन्होंने पूछा, दुर्गा तो यहाँ नहीं आई है? नानी बोली, क्यों, क्या बात है, तुम दोनों घबराए हुए हो? माँ बोली, दुर्गा का कहीं पता नहीं है, रात से गायब है। नानी छाती पीटती हुई बोली, हाय मेरी दुर्गा कहाँ चली गई? वो बेटी दामाद को फटकारती हुई आगे बोली, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाकर उसका पता लगाओ। ये कहकर नानी मगरमच्छी आंसू बहाने लगी। मेरे माता पिता मायूस होकर लौट गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि मैं उन्हें यहाँ जरूर मिल जाऊंगी। माता पिता के जाते ही मैं नानी से लिपट गई और बोली, नानी नाटक तो तुम्हारा कमाल का रहा। वो मुस्कुरा कर बोली, फिलहाल तो संकट टल गया है। नानी पेट काट काट कर मुझे पढ़ाती रही, पर वो ये भी समझ गई थी कि आगे पढ़ाना उनके लिए कठिन होगा। इसका उन्हें हार्दिक दुख था। आपकी दयालुता के बारे में उन्हें ज्ञात था, तभी वो विवाह में पहुंच गई थी ताकि आपसे मदद लेकर मेरी पढ़ाई चालू रख सकें। प्रिंसिपल सुनंदा दुर्गा की पूरी बात सुनने के बाद बोली, बेटी तुम्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें हर साल मैं छात्रवृत्ति दिलवा दूंगी, इसके अलावा मैं तुम्हें जेब खर्च अपनी तरफ से दूंगी, बस बेटी मन लगाकर पढ़ना। दुर्गा ने कृतज्ञता से सुनंदा की तरफ देखते हुए कहा, आपको माँ कहकर संबोधित नहीं करूंगी, क्योंकि इस शब्द की घृणित छवि ने मेरे हृदय में हमेशा के लिए स्थान ले लिया है। आपको नानी माँ कहूंगी, क्योंकि नानी का मेरे हृदय में जो सम्मान है उससे भी ज्यादा आपके लिए है। आपकी कृपा मैं जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगी, मेरे कारण कभी आपका सिर नीचा नहीं होगा। सुनंदा ने पूछा, तुम्हारे माता पिता दूसरी बार नानी के पास आए थे? दुर्गा ने उत्तर दिया, हाँ एक बार आए थे, मैं कॉलेज में थी। नानी ने उनसे पूछा था कि मेरा पता चला? उन्होंने दुखी होकर कहा था, शायद दुर्गा गुंडों के चंगुल में फंस गई है, अब तो कोई आशा भी नहीं रही। नानी ने मगरमच्छी आंसू बहाते हुए कहा था, बेटी अब तुम दोनों मेरे पास मत आया करो, तुम्हें देख दुर्गा की याद ताज़ा हो जाती है। अब मैं मोहमाया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, तुम लोगों के आने से मुझे दुर्गा की याद सताएगी, इसलिए अब मेरे पास मत आना। तब से माँ तथा पिताजी नहीं आए हैं। सुनंदा ने कहा, दुर्गा बेटी बीए में तुम्हें प्रथम स्थान लेना है, तभी तुम्हारी नानी माँ का मस्तक गर्व से ऊँचा होगा। तुम हॉस्टल में रहोगी, नानी तुमसे मिलने आया करेंगी। सुनंदा ने दुर्गा के लिए हॉस्टल में इंतजाम करवा दिया। बीए का परीक्षा फल निकला, दुर्गा की प्रथम श्रेणी तथा प्रथम स्थान आया। नानी तब उससे मिलने आई। सुनंदा ने उनसे कहा, विश्वास मानिए ये सब दुर्गा की मेहनत का फल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आगे भी इसी तरह तरक्की करती रहेगी। नानी की आंखों में सुनंदा के लिए अपार श्रद्धा उमड़ आई। सुनंदा ने दुर्गा के लिए बीएड में दाखिले के लिए आवेदन पत्र भिजवा दिया। उसे बीएड में दाखिला तो मिल गया, पर हॉस्टल में स्थान न मिला। सुनंदा कॉलेज की प्रिंसिपल उर्मिला के पास पहुंची। उन्हें आने में देर होती देख उन्होंने चपरासी से पूछा, प्रिंसिपल साहिबा कहाँ हैं? उसने उत्तर दिया, अपने कमरे में आराम कर रही हैं। प्रिंसिपल उन्हें देखकर घबरा गई और देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। सुनंदा ने कहा, आपके हॉस्टल में कोई कमरा खाली नहीं है ना? उर्मिला बोली, जी हाँ, वो तो मैं आपको पहले ही लिख चुकी हूँ। सुनंदा ने कहा, आप ड्यूटी के वक्त आराम कर रही थी, ये गलत कर रही थी, और जिस कमरे में आप आराम कर रही होंगी वो ज़रूर खाली होगा। उर्मिला बोली, मैडम तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इस कारण आराम कर रही थी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। रही कमरे की बात, वो आप जिसे कहेंगी मैं दे दूंगी। सुनंदा बोली, जिस लड़की को मैं आपके पास भेज रही हूँ वो आपके कॉलेज का नाम रोशन करेगी, उसके जैसी प्रखर बुद्धि की लड़की विरले ही मिलती है, जैसा रूप है वैसे ही गुणों से भरपूर उसका चरित्र है। दूसरे दिन सुनंदा ने दुर्गा को प्रिंसिपल उर्मिला के पास भेज दिया। अपलक नेत्रों से प्रिंसिपल उसे देखती रही, फिर बोली, तुम्हारा नाम दुर्गा है ना? दुर्गा ने मोहक मुस्कान से उत्तर दिया, जी हाँ, मैडम सुनंदा ने तुम्हारी बहुत प्रशंसा की है, आशा है तुम उनके मान की रक्षा करोगी। दुर्गा ने कंपित स्वर में कहा, मैडम उनके एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। प्रिंसिपल हंसकर बोली, मुझसे भी तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। दुर्गा ने उन्हें आदर से नमस्कार किया और नौकरानी के संग अपने कमरे में चली गई। दुर्गा किसी भी लड़की से ज्यादा बोलती नहीं थी और ना ही कहीं घूमने जाती थी। उसका ध्येय था प्रथम स्थान पाना। अपने अथक परिश्रम से उसने बीएड में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। सुनंदा के हर्ष का परावार न रहा। उन्हें लगा अब इस लड़की के जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि वो अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। अब तो आखिरी कर्तव्य उनका ये रह गया है कि उसे नौकरी दिलाकर किसी सुयोग्य वर से उसका विवाह कर दें। एकाएक उन्हें याद आया कि एक बार उन्होंने प्रिंसिपल उर्मिला को एक लड़के से बातें करते पाया था। लड़का उन्हें भाभी कहकर संबोधित कर रहा था। कहीं वो उर्मिला का देवर तो नहीं है? वो फौरन उठ खड़ी हुई और उर्मिला के दफ्तर पहुंच गई। उन्हें देखते ही उर्मिला आदर से खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, अब आपकी क्या आज्ञा है? सुनंदा हंसकर बोली, एक बात पूछूं? उर्मिला बोली, एक नहीं कई बातें पूछिए, मुझे आपसे बातें करके परम सुख मिलता है। आप जैसी आदरणीय कहाँ मिलती हैं? सुनंदा गंभीर स्वर में बोली, आपका कोई देवर है? जी हाँ है। तो क्या उसने कोई अनुचित हरकत की है? अरे नहीं नहीं, मैं तो दूसरी बात कहना चाहती हूँ। मैं तो डर गई थी, अब आप बेखटके कहिए। सुनंदा बोली, दुर्गा आपको कैसी लगती है? मैडम, उस जैसी लड़की इस नए जमाने में मिलना दुर्लभ है। वो तो एक रत्न है। आपकी पालित कन्या आप जैसी ही तो होगी। सुनंदा बोली, क्या आप उसे अपनी देवरानी बनाने की कृपा करेंगी? उर्मिला का मुंह उतर गया। वो बोली, मुझे तो बहुत खुशी होती अगर उसे मैं देवरानी बना पाती, पर मेरा देवर तो विवाह के लिए इनकार कर रहा है। उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। सुनंदा ने कहा, गर्व तो नहीं करती, पर दुर्गा को देखकर शायद वो मान जाए। ऐसा है, मैं अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रख लेती हूँ, वहीं दोनों एक दूसरे को देख लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, उर्मिला बोली। पार्टी में सुनंदा के घर कई लोग आए। दुर्गा ने लाल किनारी वाली साड़ी पहनी तथा ऊपर से लाल रंग का ब्लाउज। बिना किसी सौंदर्य प्रसाधन के उसका चेहरा दमक रहा था। हर किसी की आंखें उसकी तरफ उठ जाती थीं। दूर बैठा उर्मिला का देवर सुबोध उस अछूते सौंदर्य का पान कर रहा था। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की जो सभी काम ऐसी आत्मीयता तथा कुशलता से कर रही है कौन हो सकती है। घर पहुंचते ही सुबोध भाभी के पास आकर बैठ गया। उर्मिला हंसते हुए बोली, कहो देवर जी, क्या बात है? कुछ चिंतित से लग रहे हो। भाभी, तुम घर और कॉलेज दोनों ही देखती हो, बहुत थक जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उर्मिला बोली, तो एक नौकरानी रख लो ना। भाभी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? नौकरानी आए दिन गायब रहेगी, चोरी करेगी वो अलग से, और कोई उपाय भी तो नहीं है। तुम्हें वर्षों से कह रही हूँ कि विवाह कर लो, घर में एक और स्त्री के आने पर मुझे सुविधा हो जाएगी, तुम सबको भी आराम मिल जाएगा, पर तुम तो कानों में तेल डाले बैठे हो। आज कह रहे हो कि मुझ पर काम का बोझ पड़ता है, इतने दिनों से तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था। सुबोध बोला, सच भाभी, मैं कसूरवार हूँ, पर यह गलती सुधारी भी तो जा सकती है, मुझसे आपका कष्ट देखा नहीं जा सकता। उर्मिला हंसकर बोली, देवर जी क्या मामला है, जरा स्पष्ट तो करो। सुबोध सकुचाता हुआ बोला, भाभी मैं अब विवाह के लिए तैयार हूँ। उर्मिला चहकती हुई बोली, अरे लड़कियों की क्या कमी है, अभी इशारा करूं तो बीसियों लड़कियां आकर खड़ी हो जाएं। मुझे बीसियों से क्या लेना देना है, अपने राम के लिए तो एक ही काफी है। तो सेठ धनी राम से बात करूं? उनकी लड़की तुम्हारी देखी हुई है, इसके अलावा वो दहेज भी खूब लाएगी। भाभी तुम भी किस सड़ियल की बात ले बैठी, मेरी बीवी तुमसे सुंदरता में 25 होनी चाहिए, ऐसी वैसी नहीं, समझ गई ना। उर्मिला बनती हुई बोली, अब तुम्हारे लिए अप्सरा कहाँ से लाऊं? अरे बगल में लड़की और शहर में ढिंढोरा, तुम भी खूब हो भाभी, ये कैसी रहस्यमय बातें कर रहे हो, कौन लड़की मेरे बगल में है? सुबोध बोला, भाभी अब ज्यादा ना बनो, अरे वही लड़की जो पार्टी में कल लाल साड़ी वाली, बेचारी सबकी आव भगत कर रही थी। वाह देवर जी, अभी से वो बेचारी हो गई, अभी तो विवाह नहीं हुआ है तो ये हाल है। विवाह के पश्चात तो मुझी से उसका सभी काम करवाने का इरादा है क्या? भाई मुझे ये संबंध पसंद नहीं है। सुबोध गिड़गिड़ाता हुआ बोला, अरे भाभी तुम तो नाराज हो गई, उसे तो तुम्हारी सेवा के लिए ला रहा हूँ। उर्मिला गंभीर होकर बोली, एक बात याद रखना, वो लड़की अनाथ है, प्रिंसिपल सुनंदा की वो पालित पुत्री है, वहाँ तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। भाभी रुपए पैसे को गोली मारो, क्या मैं निखट्टू हूँ जो पत्नी के पैसों पर जिंदगी बसर करूँगा? तुम चिंता ना करो, मुझे सब मंजूर है। उर्मिला बोली, तो बात पक्की करूँ? भाभी देखी और पूछ पूछ, बस जल्द से जल्द शहनाई बजवा दो। दूसरे दिन उर्मिला प्रिंसिपल सुनंदा के पास पहुंचकर बोली, आपकी विधि से कार्य सफल हो गया। मेरे देवर तो दुर्गा से विवाह करने के लिए उतावले बैठे हैं, बस आपकी आज्ञा की देर है। सुनंदा ने कृतज्ञता से उर्मिला की तरफ देखते हुए कहा, ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है। एक बात मैं आपको पहले से बता देना चाहती हूँ। बीच में ही टोक कर उर्मिला बोली, यही ना कि आप कुछ ना दे पाएंगी, पर आपने दुर्गा जैसी लड़की हमें दी, ये आपका कम उपहार है। ऐसी सर्वगुण संपन्न लड़की सुबोध को कहाँ मिलती। बस अब आप दिन तय कर लीजिए। सुनंदा बोली, आज रविवार है, अगले रविवार को यह विवाह होगा। सुनंदा ने विवाह अपने घर से ही करने का फैसला कर लिया। दुर्गा की नानी भी वहीं आ गई थी। लाल जोड़े में दुर्गा का सौंदर्य देखते ही बनता था। दुर्गा को फूलों से सजाया गया था। वो वन देवी सी लग रही थी। सुबोध एक टक उसे निहारे जा रहा था। उसे झकझोरते हुए उर्मिला बोली, देवर जी अब बस भी करो, पूरी रात पड़ी है मुंह निहारने के लिए। अभी से खजाना खाली कर दोगे तो रात को क्या देखोगे। सुबोध मुस्कुराता हुआ बोला, भाभी घबराओ मत, अपने पास कारों का खजाना है, खत्म नहीं होने वाला जल्दी। लज्जा से दुर्गा का मुंह और भी लाल हो गया। पति का परिहास उसे गुदगुदा गया। उसने अपनी घनी पलकें उठाकर सुबोध को निहारा, फिर लज्जा से आंखें स्वतः झुक गईं। बड़ी सादगी से विवाह संपन्न हुआ। भरी आंखों से दुर्गा नानी से गले मिली, फिर से सकती हुई सुनंदा के गले से लिपटकर सुबकने लगी। सुनंदा की आंखें भी छलछला उठी। उन्होंने दुर्गा को भींचते हुए कहा, बेटी अपनी नानी तथा नानी माँ की लाज रखना, कोई ऐसा काम ना करना जिससे उनकी गर्दन नीची हो। दुर्गा सुनंदा के पैर छूकर सिसकती हुई बोली, नानी माँ जान रहते मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उर्मिला देवरानी को लेकर घर आ गई, जिसने भी बहू को देखा मुक्त कंठ से प्रशंसा की। सुबोध के दोस्त उसे घेरे बैठे थे, वो मनी मन कुढ़ रहा था। घड़ी में 10 बजते ही वो उठ खड़ा हुआ और दोस्तों से बोला, मित्रों अब कल भेंट होगी। एक दोस्त बोला, यारों अब चले, ऐसी रूपसी पत्नी के आगे अब हमें ये क्यों पूछेगा। सुबोध अंदर गया तो भाभी बोली, बड़ी जल्दी छुट्टी पा गए, दुर्गा देवी के दर्शनों की इतनी उत्कंठा है तो जाओ, देवी भी तुम्हारी बाट देख रही है। ये कहती वो खिलखिला उठी। कमरे में घुसते ही फूलों की महक ने उसके अंग अंग में ताजगी भर दी। कमरा बहुत ही सुघड़ता से सजाया गया था। हल्के नीले रंग के पर्दे हवा में हिल रहे थे, उसी रंग का बल्ब चल रहा था। पलंग पर फूलों की झालर लटक रही थी। पंखे की हवा से हिल हिल कर वे झालरें मानो अंदर आने का निमंत्रण दे रही थीं। पलंग पर दुर्गा हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में लंबा घूंघट किए बैठी थी। उस पारदर्शक साड़ी से झांकता हुआ उसका लुभावना चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। फूलों के गहने उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। सुबोध कोमलता से दुर्गा का घूंघट उठाकर उसे मुग्ध भाव से निहारते हुए बोला, तुम तो सच में शिल्पकार द्वारा गढ़ी मूर्ति सी लग रही हो, तुम्हें पाकर तो मैं धन्य हो गया। अपनी कोमल मेहंदी से रची हथेलियां सुबोध के मुंह पर रखती वो धीरे से बोली, धन्य भाग तो मेरे हैं जो आप जैसा पति मिला है। मुझ अकिंचन को तो आपने स्नेह से मालामाल कर दिया है। भोर ही में दुर्गा उठ गई। जल्दी जल्दी स्नान करके वो रसोई घर में घुस गई। उसने चाय बनाई और पहले जेठ जेठानी की चाय लेकर उनके कमरे का दरवाज़ा हल्के से थपथपाया। उर्मिला ने ही दरवाज़ा खोला। सद्य स्नाता दुर्गा हाथ में चाय की ट्रे लिए मुस्कुराती हुई खड़ी थी। सिर पर कायदे से पल्ला ढका था। उर्मिला एक टक देखती रह गई। ट्रे को मेज पर रखकर उसने जेठानी के पैर छुए। उर्मिला अवाक थी। जेठ ने बड़े स्नेह से उसकी ओर देखा। उर्मिला बोली, दुर्गा कल ही तो तुम आई हो, अभी से घर के काम में जुट गई। दुर्गा मुस्कुराती हुई बोली, दीदी ये घर हम दोनों का है, मैं छोटी हूँ, इस कारण मुझे आप लोगों की सेवा करनी है। सच दीदी, काम करने में मुझे परम सुख मिलता है। उर्मिला ने प्यार से उसे सीने से चिपकाते हुए कहा, पगली हमारी ही सेवा करती रहेगी या पति का भी कुछ ख्याल करेगी। दुर्गा का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। वो बोली, दीदी आपके दर्शन कर लिए, अब उन्हें भी चाय देने जा रही हूँ। पहले ही दिन इतना प्यार तथा आदर पाकर उर्मिला तथा उसके पति गदगद हो गए। चाय का प्याला लेकर दुर्गा अपने कमरे में पहुंच गई। देखा सुबोध गहरी नींद में सोया हुआ है। दुर्गा ने प्याला मेज पर रखकर उसे धीरे से गुदगुदाया। वो उसे आलिंगन में लेकर फिर सो गया। अपने को छुड़ाती हुई दुर्गा बोली, नवाब साहब जल्दी उठिए, चाय ठंडी हो रही है। नींद में ही सुबोध बड़बड़ाया, दुर्गा जरा और पास आना। वो हंसती हुई बोली, एजी जरा आंखें खोलो, सूरज सिर पर आ गया है। दफ्तर नहीं जाना क्या? चलो फटाफट तैयार हो जाओ। सुबोध ने आंखें खोली, पत्नी को देखकर वो मुग्ध भाव से निहारता हुआ बोला, चाय वाय सब पी ली है, बस थोड़ी देर हमारे साथ आकर बैठो। दुर्गा बोली, देखो चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी, फिर मैं दूसरी चाय बनाने चली जाऊंगी। ऐसा कसम मत करना, हमें ठंडी चाय पीनी कबूल है पर तुम्हारा यहाँ से खिसकना नहीं, समझ गई ना? लो हम एक मिनट में ब्रश करके आते हैं। सुबोध लपक कर स्नानागार में घुस गया, फिर चाय पीने बैठ गया। चाय खत्म करके दुर्गा बोली, अब फटाफट तैयार हो जाओ, सभी सामान स्नान घर में रख दिया है, अगर और कुछ चाहिए तो आवाज़ देकर बुला लेना, मैं रसोई घर में नाश्ता तैयार करने जा रही हूँ। पर एक बात याद रखना, बेकार में मुझे मत बुलाना, भाभी क्या सोचेंगी। सुबोध तैयार होकर भोजन कक्ष में आया, मेज़ पर हलवा पकौड़ियाँ तथा आलू की टिकिया जाली से ढककर रखी थी और दुर्गा चाय लेकर आ रही थी। सुबोध ने आवाज़ लाई, अरे भाभी जल्दी आ जाओ, घंटे भर से नाश्ता ठंडा हो रहा है। उर्मिला तथा उसके पति सुरेंद्र कमरे में घुसते हुए बोले, क्या बढ़िया महक आ रही है। दुर्गा बोली, दीदी खाने के समय आप और भैया ज़रूर आ जाना। फिर पति की तरफ आंखें नचाकर बोली, आपको तो थोड़ा दूर है शायद आना पाओ। सुबोध जल्दी से बोला, अरे मेरा दफ्तर दूरी कितना है, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मैं गर्म तथा बढ़िया खाना छोड़कर कैंटीन का सड़ियल खाना क्यों खाऊं। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। दुर्गा को लगता था दीदी के एक बच्चा होता तो घर में रौनक हो जाती। एक दिन उसने विनीत भाव से उर्मिला से कहा, दीदी एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे। उर्मिला प्यार से उसकी ठुड्डी पकड़ती हुई बोली, कहो देवरानी जी क्या कहना चाहती हो। शहर में एक त्रिशूल धारिणी सन्यासिनी आई है, सुना है उनके आशीर्वाद से न जाने कितनी स्त्रियों को पुत्र प्राप्त हुए हैं, क्यों ना हम भी किसी दिन चलें। उर्मिला बोली, देखो दुर्गा तुम तो पढ़ी लिखी हो फिर भी ऐसी बातों पर विश्वास करती हो, ये सब ढोंगी होते हैं, मुझे ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है। अब तो इस घर में जल्द से जल्द बच्चे की किलकारी गूंजे, ये मेरा नहीं तुम्हारा काम है। पर दीदी एक बार जाने में क्या हर्ज है, वो महान है, न जाने उन्होंने कितनी स्त्रियों को गुंडों के चंगुल से छुड़ाया है। उनके त्रिशूल में कुछ ऐसी शक्ति है कि दुश्मन देखते ही भाग खड़ा होता है या मुकाबला भी करता है तो हार कर भाग जाता है। उस सन्यासिनी के मुख पर अद्भुत तेज है, वो रात दिन अपना त्रिशूल लिए घूमती रहती है, उन्हें किसी से डर नहीं लगता। लोग कहते हैं कि निर्बलों की रक्षा हेतु उनके त्रिशूल में प्रकृति ने कोई शक्ति भर दी है। उर्मिला बोली, दुर्गा अगर किसी पर अविश्वास हो तो काम वैसे ही फलीभूत नहीं होता। जिस दिन मुझे इन बातों पर विश्वास हो जाएगा मैं स्वयं चली जाऊंगी, मेरे विश्वास पर ही मेरा काम सिद्ध हो जाएगा। सुनकर दुर्गा का मुंह लटक गया। 2 दिन बाद ही उर्मिला के कॉलेज में वार्षिक उत्सव था। चलते समय वो कह गई थी, दुर्गा तुम वक्त पर पहुंच जाना। सुबोध दफ्तर के काम से बाहर गया था। दुर्गा ने झटपट घर का काम निपटाया और तैयार होने लगी। जाड़े के दिन थे, 6 बजे से ही अंधेरा हो गया था। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी निकाली जो सुबोध ने दी थी। उर्मिला कहकर गई थी कि ठीक से तैयार होकर आना, वहीं पर मैं तुम्हारा सबसे परिचय करवाऊंगी। इस कारण भी दुर्गा ने अपना अनुपम श्रृंगार किया था। उसने रिक्शा के लिए इधर उधर निगाह उठाई पर एक भी रिक्शा न देख पैदल ही चल पड़ी। एकाएक अंधेरे में किसी ने दुर्गा को कसकर पकड़ लिया। उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली, चारों तरफ गूंज उठी। अपने को उस पुरुष पाश से छुड़ाने के लिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वो पुरुष ज्यादा ही बलवान था। वो उसकी पकड़ से निकलती पर वो फिर पकड़ लेता। दुर्गा ने फुर्ती से जूड़े का नोकदार कांटा निकालकर उस पुरुष के हाथ में अपनी पूरी शक्ति से गड़ा दिया। उस आदमी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। 1 सेकंड के लिए उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। दुर्गा एक बार फिर जोर से चिल्लाई। अंधेरे में एक गंभीर आवाज सुनाई पड़ी, बेटी मैं आ गई हूँ, घबराना मत। उसने धुंधले में देखा एक स्त्री हाथ में त्रिशूल लिए वेग से उसकी तरफ भागी आ रही है। अंधेरे में भी उसका त्रिशूल चमक रहा था। गुंडे ने आगे बढ़कर उससे मोर्चा लिया। जब उसने देखा कि वो त्रिशूल धारणी से पार नहीं पा सकेगा तो उसने कमर से छुरा निकालकर उस पर वार किया। छुरे का वार उसने त्रिशूल पर रोका, पर फिर भी उसकी बांह पर थोड़ा सा जख्म हो ही गया। अब त्रिशूल धारणी को क्रोध आ गया। उसने त्रिशूल का भरपूर वार गुंडे के सिर पर किया जिससे वो अचेत हो गया। त्रिशूल धारणी बोली, बेटी तुम्हें अकेले नहीं निकलना था। दुर्गा बोली, माँ जाना जरूरी था, रिक्शा मिला नहीं, मेरे पति भी बाहर गए हुए हैं, इसी कारण अकेले जाना पड़ा। त्रिशूल धारणी का पूरा शरीर गेरुए वस्त्र से ढका हुआ था। उन्होंने प्यार से कहा, चलो बेटी तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। रोशनी आते ही त्रिशूल धारणी सन्यासिनी ने एक भरपूर नजर दुर्गा पर डाली। थोड़ी देर के लिए वो अपने होश हवास गंवा कर गिरते गिरते बची। दुर्गा ने भी उन्हें सहारा देकर जैसे ही उनका मुंह देखा तो वो थोड़ी देर के लिए जड़ हो गई, फिर रोती हुई उनसे लिपट गई। एक दिन इसी माँ ने उसे बेचने की योजना बनाई थी और आज उसी ने उसकी इज्जत बचाई। कैसा विरोधाभास था। थोड़ा सहज होते ही वो बोली, माँ तुम ही त्रिशूलधारिणी माँ के नाम से असहायों की रक्षा करती हो। उन्होंने उदासी से हाँ में सिर हिलाया। दुर्गा ने पूछा, माँ पर पिताजी कहाँ हैं, तुम ऐसे वेश में कैसे आ गई। त्रिशूलधारिणी बोली, दुर्गा बेटी तेरे जाने के बाद हमने सोचा कि जिन लोगों को हमने जन्मदिन पर बुलाया था उन्हीं में से किसी ने तेरा अपहरण कर लिया है। हमने बहुत खोजा पर तेरा कहीं पता न चला। बीच में ही उन्हें टोक दुर्गा बोली, माँ मैंने तुम्हारी सभी बातें छोटे कमरे से सुन ली थीं। मैंने फौरन भागने की योजना बना डाली। मैं सीधे नानी के पास पहुँच गई थी। नानी मुझे तुम्हारे चंगुल से निकालने के लिए झूठ बोली थी। उनके पास जब तक पैसा था उन्होंने मुझे पढ़ाया, फिर प्रिंसिपल सुनंदा को मुझे सौंप दिया। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और योग्यवर से मेरा विवाह भी करवा दिया। मैं अत्यंत सुखी हूँ माँ। अब अपने तथा पिताजी के बारे में बताओ। वो बोली, बेटी तेरे जाने के बाद हमारा जीवन बर्बाद हो गया। हमें लगा ना जाने कितनी लड़कियों की आहें ली हैं हमने। ये उसी का परिणाम है कि हमारी बेटी को भी गुंडे उठाकर ले गए। हमें तुमसे अथाह प्रेम था, पर पता तो तुम्हारे जाने के बाद लगा। धन की लिप्सा ने हमें पतन के गर्त में लाकर ऐसा पटका कि हम अपनी बेटी को भी बेच बैठे। अपने किए की वेदना में हम दोनों जलते रहे। तुम्हारे पिता ज्यादा दिन तुम्हारा विछोह सहन नहीं कर पाए। मरते मरते भी उनकी जबान पर तुम्हारा नाम था। पश्चाताप की आग में जलते जलते ही उनके प्राण निकले थे। मुझे भी अपने किए पर इतना पश्चाताप हुआ कि मैंने गंगा में छलांग लगा दी। जब होश आया तो देखा मैं जंगल में एक पर्ण कुटी में पड़ी हूँ और एक साधु मुझे कुछ जड़ी बूटी पिला रहा है। मुझे आंखें खोलते देख वो बोला, आत्महत्या जैसा घृणित अपराध क्यों कर रही थी। मैंने उन्हें हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझ जैसी दुष्ट औरत का अब सिवा गंगा के कोई स्थान नहीं है। मैंने अपने घृणित जीवन की एक एक बात उन्हें बताकर पूछा, क्या यह जीवन अब जीने योग्य रह गया है। साधु ने गंभीरता से कहा, जिनका सर्वनाश किया है उनकी रक्षा करके भी तुम अपने अपराधों से मुक्ति पा सकती थी, फिर ऐसा क्यों नहीं किया। ये जीवन प्रकृति की धरोहर है, वो इसे जब चाहे ले सकती है, पर तुम्हें इसे नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने रोते हुए कहा, मैं अबला गुंडों से असहाय स्त्रियों की कैसे रक्षा कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे धीरज बंधाते हुए कहा, पहले अपने में आत्मशक्ति और आत्मविश्वास का संचार करो, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। मैंने कहा, इस दुष्ट स्त्री पर आपकी इतनी कृपा है तो मैं अपने में आत्मविश्वास का संचार जरूर कर लूंगी। तब उन्होंने मुझे ये त्रिशूल देते हुए कहा, तुम इसी से दुष्टों का संहार करोगी, तुम्हारी आत्मशक्ति इस त्रिशूल में रहेगी। अब जाओ अपने कार्य में जुट जाओ। तब से मैं अपने अपराधों से मुक्ति पाने के लिए रात दिन दुष्टों से टक्कर लेने लगी। सभी को विश्वास हो गया कि इस त्रिशूल में कुछ शक्ति है जिसे देखते ही दुष्ट भाग खड़े होते हैं और जो सामना करते हैं परास्त हो जाते हैं। मैं शहर शहर घूमती हूँ और असहाय स्त्रियों की सहायता करती हूँ। यही मेरी कहानी है। अच्छा बेटी, अब शायद तुम्हारा घर आ गया होगा, तुम चली जाओ, पर इस नीच माँ का जिक्र किसी से मत करना। अपने कलुषित अतीत की छाया मैं तुम पर नहीं पड़ने दूंगी। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मैंने तुम्हारा सौदा किया था। दुर्गा ने रोते रोते उनके गले में बाहें डालकर कहा, माँ मुझे क्षमा करना, तुम्हारे प्रति अब तक मैं घृणा ही पाले हुए थी। आज उस घृणा का अंत होकर एक ममतामयी माँ का स्वरूप मेरे हृदय में बस गया है। गलती इंसान से होती है, अगर उसका प्रायश्चित कर लिया जाए तो जीवन सुधर जाता है। माँ तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, चलो अंदर में पट्टी बांध दो। सन्यासिनी फीकी मुस्कुराहट से बोली, बेटी अब मैं मोह माया से परे हो गई हूँ। अब मेरी एक नहीं लाखों बेटियाँ हैं, उनकी रक्षा करना ही मेरा ध्येय रह गया है। अब ये काला खून जितना निकल जाए अच्छा रहेगा। दुर्गा बोली, माँ ये खून काला नहीं लाल रंग का बन चुका है, इसी खून की ताकत से तुम दुष्टों का संहार करोगी। सन्यासिनी ने भरी आंखों से दुर्गा को निहारते हुए कहा, प्रकृति कितनी कृपालु है, मेरे जुर्मों का फल मेरी बेटी को नहीं दिया। बेटी तुम सदा फूलो फलो, यही मेरी कामना है। ये कहकर आंसू पोंछती हुई वो त्रिशूल धारणी सन्यासिनी अंधकार में विलीन हो गई।
arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है, लेखिका श्रीमती शकुंतला ब्रजमोहन, वाचक स्वर संज्ञा टंडन।